اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزادران امام رضوی کالج بامبے کی 1440 ہجری کی دوسری مجلس ہے سیکنڈ مجلس ہے جو ہسٹری پہ ہو رہی ہے اسلام کی ہسٹری اسلام کے وہ پلیسز وہ جگہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہماری پلیسز ہے ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی جگہ بڑی اسپیشل ہوتی ہے جیسا کرسچینٹی میں ویٹیکان ہے جوز میں ان کے پاس بیت المقدس ساری وہ چیزیں ہر مذہب میں کوئی اب میں یہاں کہہ تو آپ سب کو معلوم ہے انڈیا میں کس کی کون سی اسپیشل جگہ ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو جگہیں ہیں جو پلیسز ہیں اللہ ہم کو وہاں بار بار وزٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے سارے مسلمانوں کے لیے وہ ہے مکہ مکے سے بڑا ظاہری طور پہ میں کوئی جگہ کو کمپیئر نہیں کر رہا ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ ہر جگہ اپنے مقام پہ صحیح ہے لیکن عام مسلمانوں کے لیے سب سے جو اسپیشل جگہ ہے وہ مکہ ہمارے لیے بھی اسپیشل جگہ ہے مکہ مکہ ہے مدینہ ہے مدینہ منورہ مکہ معظمہ پھر نجف اشرف ہے پھر کربلا مولا ہے پھر کاظمین ہے سامیرہ ہے پھر مشہد مقدس ہے پھر معصومہ کا روضہ ہے خم کل میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ اتنی جگہیں ہیں لیکن یو ہیو سین کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ میں یہ 9 دن میں یہ عشرے میں کمپلیٹ کر سکوں اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کل کہ جو جگہیں چھوٹ جائیں گی اس کی ڈیٹیل اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا گلستان کے عشرے میں جو 12 محرم سے شروع ہوتا ہے اس لیے یہ ٹاپک لی گئی کہ ہم زیارت پہ تو جاتے ان جگہوں کی زیارت ماشاءاللہ سب نے کی اور جس نے نہیں کی اللہ جلد سے جلد کرائے اور جس نے زیارت کی اللہ اس کی زیارت قبول کرے اس لیے کہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے اسلام سٹارٹ ہوا آغاز ہوا اسلام کا تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ ہے کیا کل آپ نے ڈیٹیل میں پھر بھی بول رہا میں نہیں گیا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں 5 دن خالی مکے پہ پڑھ سکتا ہوں کہ مکہ کیا تھا لیکن وہی افسوس کے ٹائم کا فیکٹر آج مکے کو ختم کروں گا کل مدینے میں چلا جاؤں گا تو موسٹ پرابلی یہ رضوی کالج کے عشرے میں نجف اشرف کمپلیٹ ہوگا اس لیے کہ نجف اشرف میں ہماری نگاہ میں صرف مولا علی کا روضہ ہے نہیں نجف مولا کا روضہ سب سے بڑا ہے وہ مین ہے لیکن اس کے امام علی کے اطراف کون ہیں ایسی ایسی غور سے سننا ایسی ایسی پرسنالٹیز آرام کر رہے امام علی کے پہلو پورا اطراف میں وہ سرکل میں ایسی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ اگر یہ لوگ غور سے سنیں یہ لوگ باہر رہتے میں نے کہیں اور ان کی گریو رہتی 10 میل پہ 20 میل پہ 100 میل کے اوپر ان کی گریو رہتی تو ہر گریو ہر لحظ سے معجزے ظاہر ہوتے لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے امام علی سورج ہے یہ سب ستارے ہیں تو ایسی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ ہم جب زیارت کو جائیں نجف اشرف کو تو مولا کے پاس خالی جا کے نہیں مولا کے پاس سب سے پہلے مولا کو جا کے سلام کرو پھر یہ مولا ہی کے وہ لوگ ہیں امام علی کے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی لائف کو امام علی کی لائف پہ چلایا لائف آف امام علی کو انہوں نے سامنے رکھ کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے چیلنج کیا ہے دشمن کو حکومتوں کو چیلنج کیا اور ان لوگوں نے وہاں پہ ایسی زندگی گزاری کہ مذاق نہیں ہے 700 ایئرس امام علی کی شہادت کے 700 ایئرس کے بعد جو یہ لوگ آئے کچھ لوگ وہاں پہ ہیں جو مولا علی سے اتنے قریب ہیں کہ اگر یہاں پہ مولا علی کی زری ہے ये सामने वो है. कैन यू इमेजिन? इमेजिन करें यार आप बहुत इजी लेके सुने ये जुमला. 700 साल तक, 700 ईयर्स तक अली ने उस जगह को रोक के रखा इनके लिए. मजाक है? ये वो पर्सनालिटीज. इंशाल्लाह कल और परसों शायद मदीने मुनवरा हो. 5 मुहर्रम से नजफ अशरफ में एंटर होगा. हो सकता नजफ अशरफ में पूरे 4 दिन ही पढ़ता रहूं. इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहीं पे. वादी सलाम हम जाते ज्यारत में, जब जाते फातिहा पढ़ते, वी जस्ट कम बैक. हमको मालूम ही नहीं. जब ये हिस्ट्री सुन के तुम जाएंगे तो तुमको एहसास होगा कि ये कैसी जगह है. और नजफ कब से, सिंस हाउ लॉन्ग नजफ अशरफ की वो जगह है. इमाम अली की जो ग्रेव है वो कब से. मौला तो 40 हिजरी में शहीद हुए, लेकिन मौला की ग्रेव कब से तैयार है. मतलब एक जखीरा है वो हिस्ट्री का. इंशाल्लाह वो परसों से होगा. आज मक्का, जैसे मक्का ही में इतने लोग हैं. कल जहां तक पहुंचा था मैं वापस आ रहा हूं वहां पर, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहा. इसलिए कि बच्चों को, यूथ को समझ में आ जाए कि हम जिस जगह पे है, जिस चीजों को हम मानते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. वही है ना कि इस्लाम ग्रांटेड मिला हमको, माँ बाप से मिल गया, दादा दादी से मिल गया, तो हमको फिक्र ही नहीं है. और प्रॉब्लम दूसरा ये है कि कोई बताता भी नहीं. जब ज्यारत में भी जाते तो वी जस्ट गो टू खाने काबा. खाने काबा के अंदर मैंने आपसे कल बात कहां तक पहुंची थी कि काबा बिल्ट हुआ. बिल्ट होने के बाद हजर अस्वद, अब कल की मजलिस में लोगों ने कहा मौलाना मालूम ही नहीं था कि हजर अस्वद इतना पुराना पत्थर है जो आके वहां पर रखा. मैं वो भी मैंने 2 जुमलों में बोल दिया. उसकी डिटेल पूरी मजलिस हजर अस्वद पे पढ़ सकते, पूरी 1 घंटे की तकरीर, कि हजर अस्वद क्या है, वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आप सोचो कि कई साल हो गए, 14 मैंने कई साल हो गए नबी इब्राहिम के जमाने से आज तक, वो स्टोन में इतना 1 इंच 1 मिलीमीटर का फर्क नहीं आया. जबकि अगर हम मुसलसल उसको प्रेस करते जाए, प्यार करते जाए, बोसा देते जाए, किस करते जाए, तो स्टोन में कोई तो फर्क आना. जैसा था वो, हजर अस्वद ही एक मोजिजा है. अब वो ईमान को लेता है. आपको मालूम है जब हजर अस्वद के बाद कोई जाके प्यार करता है ना, हजर अस्वद रोजे मैशर हमारी गवाही देगा अल्लाह के सामने हमारे ईमान की. वो सुने. और एक बात कल मैंने नहीं बोला था, आज बोल रहा, कि हजर अस्वद जो खाने काबे के अंदर है, तो आपको मालूम है हजर अस्वद भी चोरी हो गया था. क्या क्या चुराया है लोगों ने, पूरे इस्लाम को चुरा लिया. नहीं, इस्लाम का हशर कर दिया चुरा के. मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं. हजर अस्वद 70 ईयर्स तक चोरी हो गई थी, लेकिन वो ऐसा स्टोन है कि किसी के पास रह भी नहीं सकता. वो उसी के पास रहता जो उसका वारिस है. क्या बोल रहा हूं. अच्छा, और एक एक बात बोलूं हजर अस्वद के बारे में, कि जैसा काबे की ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग तो कई दफा टूटी, कई दफा बनी. आज एक वाकया और आएगा जनाब मक्के का. तो जब ये बिल्डिंग टूटी थी चौथे इमाम के जमाने में, तो सिवाय हजर अस्वद की, मखसूसी आपको याद रहना चाहिए कि हजर अस्वद सिवाय मासूम के उसको काबे में कोई फिक्स नहीं कर सकता. आप नहीं समझे बात. इन्हें सिवाय इमाम के, हर दौर का इमाम, कोई इमाम मौलाली से लेकर जमाने के इमाम तक, कोई इमाम इमाम के अलावा कोई फिक्स नहीं करता सकता काबे में. करेगा, हुकूमत ने कोशिश की, वो फिक्स ही नहीं हो रहा, आगे गिर जा रहा, इधर हो जा रहा. इसलिए कि वो जानता है, पत्थर जानता है कि वारिस कौन है. पत्थर से सीख लो यार कि काबे का वारिस कौन है. अगर आपकी इस लाइफ में, हमारी ये जिंदगी में, अगर कभी काबे की बिल्डिंग टूट जाए, पॉसिबिलिटी है, बारिश बहुत हो जाए, कोई ऐसा चीज हो जाए कि काबा टूट जाए, फिर बन जाएगा. बनना कोई मुश्किल नहीं. ये स्टोन जो है नबी इब्राहिम के थोड़ी है, ये तो हार्डली 100 ईयर्स पुराने. अगर बिल्डिंग टूटे, मैं अभी बोल रहा, अगर कभी बिल्डिंग टूटे और काबा रिकंस्ट्रक्ट हो, वो भी पॉसिबिलिटी है. जब काबा रिकंस्ट्रक्ट होगा तो हजर अस्वद फिक्स किया जाएगा. जब हजर अस्वद फिक्स किया जाएगा तो आप दुनिया में कहीं रहना, वो डेट पे मक्के में जरूर रहना. नहीं समझे मैं क्या बोल गया. क्यों रहना मक्के में, कि यू कैन सी योर इमाम. इमाम की ज्यारत हो सकती, बारहवें इमाम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा हूं, आप मालूम कर लो कि हजर अस्वद को सिवाय मासूम के कोई फिक्स नहीं कर सकता। कितने वाकयात इमाम के हाल के 100 साल 50 साल 200 साल पुराने के लोग आए और इमाम से मुलाकात की, इमाम ट्राई करने लगे, सब देखा कि उस मजमे में एक जवान आए और आके लिया लेके यूं बस कर दिया और फिक्स हो गया। ये हजर अस्वद की बरकत और रहमत है। तो कल बात यहां तक पहुंची थी कि काबा कंस्ट्रक्ट हुआ, नबी इब्राहिम ने पुकारा, अल्लाह के हुक्म से आवाज दी और लोग हज पे, उस जमाने में हज बिल्कुल नबी इब्राहिम, जनाबे हाजरा और जनाबे इस्माइल ने किया था। मक्का में काबा बन गया। काबा बनने के बाद उसके बाद मैंने बताया कि एक ट्राइब आई और ट्राइब आके वहां पे रही, उसी ट्राइब से मक्के की आबादी शुरू हुई, लोग वहां पे आके बसने लगे, इसलिए कहे जमजम था वहां पे। अब वो चलते चलते नबी इब्राहिम के दो बेटे, मैं नबियों के हालात नहीं पढ़, दो बेटे, एक जनाबे हाजरा से इस्माइल है और उनकी फर्स्ट वाइफ जनाबे सारा जो है उनसे जनाबे इसाख है। इसाख की नस्ल आज दुनिया में नहीं है, इसाख की नस्ल चलते जनाबे मूसा से होते हुए नबी ईसा तक आई, और नबी ईसा ने शादी नहीं की, एवरीबॉडी नोस के शादी नहीं की थी उन्होंने, मरियम, मरियम के बाद जनाबे ईसा, जनाबे ईसा के बाद आके नस्ल इसाख खत्म हो गई। अब दुनिया में जनाबे ईसाख नबी की नस्ल नहीं है, जनरेशन नहीं है, लोग नहीं है, औलाद नहीं है, इसलिए कि ईसा पे आके रुकी, ईसा ने शादी नहीं की, खत्म। जनाबे इस्माइल की नस्ल बाकी है, जनाबे इस्माइल की जनरेशन से ये हाशमी खानदान बना, ये जो हमारे प्रॉफिट, पूरे ये जो 12 इमाम हैं, 14 मासूमीन है, वो जनाबे इस्माइल की नस्ल से, और ये नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी। ये जनाबे इस्माइल का एक ऑनर है कि उनके जनरेशन में, उनकी नस्ल में 14 मासूमीन आई। वहां से ये जनरेशन चलते 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 जनाबे हाशिम तक आया, हाशिम तक आया। हाशिम जो थे वो हमारे प्रॉफिट के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर जनाबे हाशिम। इसलिए कि अरब, आप जानते हैं कि अरब ट्राइब्स में बटा हुआ, पूरा अरब जो है ट्राइब्स में बटा हुआ है, ये एक ट्राइब है, ये एक ट्राइब है, ये खुरैश ट्राइब, मेन जो ट्राइब थी वो खुरैश की थी, जिसमें मैं नहीं मानता लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने लिखा ये उमैया जो है, बनी उमैया, ये भी मक्के का ही है, ये बनी उमैया का पूरी फैमिली मक्के की है, जैसा हाशमी मक्के की है ये लोग भी मक्के के। लोग ये बोलते हैं कि उमैया जो है जुड़वा भाई था जनाब हाशिम का। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए कि हमारे, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरी कोई वो नहीं, लेकिन हमारे बड़े उलमा ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि उमैया और हाशिम दोनों सगे भाई थे, नहीं, ये बाज उलमा ने और बाज मुसलमानों के राइटर्स ने लिखा, और लिखा कि वो जुड़वा, जुड़वा समझते हो कि दोनों मिल के पैदा हुए थे एक साथ, तो फिर उसको, उनको काटा गया था, दोनों को अलग किया गया, तो बहुत ब्लड बहा था। तो ये लोग लिखते, राइटर्स लिखते कि उसी वक्त जो नुजूमी थे, जो प्रेडिक्शन करते थे चीज़ों का, उस जमाने में प्रेडिक्शन का बहुत वो था। आज सुबह की रेक्सोलॉजी मजलिस में मैंने बोला है कि प्रेडिक्शंस के चक्करों में मत जाओ, ये कभी मत जाओ कि वो क्या बोल रहा, वो स्टार क्या बोल रहा, या वो आदमी क्या बोल रहा, मेरे लिए हाथ बताना, पामिस्ट के पास जाना। देखिए बाद में बात निकल रही तो मैं खाली हिस्ट्री के साथ कोई मैसेज भी तो दूं, पामिस्ट के पास जाना, पामिस्ट्री, ये सब बकवास है, एब्सर्ड बात है। कभी कभी मैं यूथ को बोल रहा, इसलिए इतना बड़ा यूथ रिज्यूमे सुन रहा मुझे, कि कभी भी लड़कियों को भी बोल रहा कि जाके तुम अपनी डेस्टिनी किसी के हाथ बता के, किसी के बोलने से डेस्टिनी नहीं होती, डेस्टिनी अली के दरवाजे पे आने से बदलती, हुसैन की बात सुनने से बदलती, आजादारी प्रॉपर करने से बदलती, मोहब्बत हुसैन रखने से बदलती, इससे नहीं बदलती। अभी याद रखो, ये मैं यूथ को बोला कि ये फिगर करो ही मत, तो क्या मेरे, इसलिए कि मैंने देखा है अभी वो बार बार अपने लाइंस को देख रहा, हाथ को देख रहा, मैंने समझा कुछ, मैंने कहा कुछ लिखा हुआ है क्या, तो बोलता कि नहीं लिखा हुआ नहीं, मैं अपने लाइंस को देख रहा कि कब चेंज होने वाली है। मैंने कहा ऐसा चेंज नहीं होती, तुम पूरी जिंदगी देखते रहो, ये मिरर थोड़ी है कि चेंज हो जाए। मैंने कहा चेंज ऐसे नहीं होती, तुम यही चीज मौला के रोजे पे जाओ, हाथों को बुलंद करके उससे बोलो कि लाइन चेंज करे, उससे मांगो, उससे बोलो कि तकदीर को बदलो। शय बदलती नहीं, तासीर बदलती है। या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। यूं तकदीर नहीं बदलती, तकदीर एक लम्हे में बदलती अगर तुम मौला किया नाम खुलूस के साथ लोगे। एनी बात में बात निकलेगी, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। तो ये दो ट्राइब्स थी, कई ट्राइब्स थी, उसमें सबसे जो बड़ी ट्राइब थी वो हाशमी ट्राइब थी, जिसमें हमारे प्रॉफिट की फैमिली है। जनाब हाशिम के बाद जनाब अब्द मनाफ है, अब्द मनाफ के बाद जनाब अब्दुल मुतल्लिब है। जनाब अब्दुल मुतल्लिब के 11 बेटे थे, उनमें 11 सन्स थे, 12 बेटे थे, उनमें दो भाई एक ही मदर से, एक ही माँ से, बाकी दूसरे माँ से। अब्दुल मुतल्लिब अल्लाह के रसूल के ग्रैंड फादर। दो बेटे उनके एक ही माँ से, एक जनाब अब्दुल्ला, एक जनाब अबू तालिब। ये दोनों सगे भाई हैं, रियल ओन ब्रदर्स हैं, और दोनों एक ही माँ से, बाप सबके अब्दुल मुतल्लिब। जनाब अब्दुल्ला हमारे प्रॉफिट के फादर है। ये इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे मक्के के, कि मैं मिंबर का तकद्दुस है कि मैं बड़ी एहतियात से पढ़ा। जनाब अब्दुल्ला के बारे में मशहूर है कि जब आप चलते थे मक्के की गलियों से, उस जमाने में ये लाइट सिस्टम नहीं था, उस जमाने में चिराग कैंडल सिस्टम था, तो रात मगरिब होती तो अंधेरा हो जाता। लेकिन जनाब अब्दुल्ला के लिए मशहूर है कि जब जनाब अब्दुल्ला मक्के की गलियों में चलते तो आपकी पेशानी से एक नूर निकलता था कि पूरा रास्ता रोशन हो जाता था। अभी अल्लाह का रसूल पैदा नहीं हुआ, ये नूर मोहम्मदी था जो बाप के पास था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप बड़ी इजी लेके सुन रहे हैं। नूर ऐसा कि चले तो आप सोचो कि लाइट के साथ चलते। इतने हसीन थे कि बाद मिंबर का तकल्लुस से बोल रहा, बाद रिवायतों में कि लड़कियां दरवाजा खोल के बाहर आ जाते थे, इतने हसीन और खूबसूरत थे जनाब अब्दुल्ला। लेकिन इनकी डेथ कैसे हुई, देखिए मैं पूरा वाकी ट्राइब के बारे में, मक्के के बारे में ही पढ़ा। ये जनाब आमिना के साथ की शादी हुई। जनाब आमिना हमारे प्रॉफिट की मदर, इनके ये भी सेम फैमिली की कजन थी। शादी हुई, शादी के बाद कोई बिजनेस ट्रिप पे ये लोग मदीना गए, और मदीना उस वक्त जो मदीना शहर था, इस शहर को, इस सिटी को खजूरों वाला सिटी बोलते थे, खजूरों वाला शहर। डेट्स ने मदीने के डेट्स आज भी मशहूर है, मक्के के डेट्स मशहूर नहीं है, मक्के के माउंटेन्स मशहूर है, मदीने मुनवरा के डेट्स खजूर मशहूर है। तो इस सिटी को बोला ही जाता था कि ये खजूरों वाला शहर है। तो ये लोग बिजनेस ट्रिप पे बीबी आमिना, एक कनीस और जनाब अब्दुल्ला गए हुए थे। 3 महीने की प्रेगनेंसी थी हमारे अल्लाह के रसूल के साथ। बीबी आमिना को सिर्फ अल्लाह का रसूल, और कोई ना बेटा है ना कोई बेटी, रसूल को ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। आप प्रेग्नेंट थी, ये लोग मदीने मुनवरा गए, और वहां पे जनाबे जवान आदमी जनाबे अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। जनाबे अब्दुल्ला रहने वाले मक्के के, डेथ हुई मदीने में। तो उस जमाने में बॉडीज को लेके नहीं आते थे, तो आपको वहीं दफन कर दिया गया मदीने मुनवरा में, मस्जिद नबवी और आज की मस्जिद नबवी की बात कर रहा, मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी का जो बीच का हिस्सा है, वहां पे जनाब अब्दुल्ला दफन है। लेकिन आप जानते हैं कि जालिमीन ने किसी कोई निशान को बाकी नहीं रखा। अल्लाह इस हुकूमत को, इस जालिमीन को खत्म करे और जन्नतुल बकी की जल्द से जल्द तामीर करवा दे। जन्नतुल बकी की तामीर, ये बहुत, अपनी दुआओं में ये दुआ को ऐड करो, मुहर्रम में बहुत जरूरी है अपनी दुआ। अफसोस कि हम ये दुआ नहीं करते ना इसको ऐड करते। हर दुआ में जब नमाज पढ़ो, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, फिर बोल रहा, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी नमाज भी कबूल हो, तुम्हारी दुआ भी कबूल हो, तो ये उसके लिए तुम दुआ कर रहे कि जो एक जुल्म अजीम जिसमें मादर हसनैन और 4 इमाम और पूरा खानदान, जब मैं मदीने में एंटर होऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जन्नतुल बकी कितना बड़ा कब्रिस्तान है और कैसी कैसी पर्सनालिटीज जन्नतुल बकी में दफन है। ये दुआओं में दुआ ऐड करो कि अल्लाह जल्द से जल्द जन्नतुल बकी को कंस्ट्रक्ट करवा दे इंशाल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो वहीं पे जनाबे आमिना, जनाबे अब्दुल्ला को दफन कर दिया गया, और जनाबे आमिना प्रेग्नेंट थी वो कनीज के साथ, शी केम बैक टू मक्का. जब मक्का वापस आई तो वो अपने फादर इन लॉ जनाबे अब्दुल मुतलिब के घर में रहती थी. तो ये दो भाई थे, मैं उनके डिटेल में नहीं जा रहा. अब्दुल मुतलिब के जो दो बेटे जनाबे अबू तालिब और जनाबे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया. उसके बाद काबे में हर साल हज होता था, उस जमाने का हज, इस्लाम नहीं आया अभी, हज होता. हज कैसे होता था, कपड़े उतारते थे, पूरी दुनिया से लोग काबे में आके हज करते थे. और उस वक्त जो काबे का शुरू से ये फैमिली, हमारे प्रॉफिट की फैमिली, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये लोग मक्के के काबे के सरदार थे, काबे के केयरटेकर थे शुरू से. और ये अपने लिए बहुत ऑनर समझते थे. सही बात है कि वारिस थे काबा तो ये लोग ही थे, तो ये फैमिली थी. तो ये फैमिली जो है शुरू से, स्टार्टिंग से काबे के केयरटेकर्स थे, मक्के के सरदार थे. और ये फैमिली प्रॉफिट की फैमिली जो थी ना, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब और जनाब हाशिम तक मैं गया, ये लोगों ने कभी कोई हराम काम नहीं किया जबकि इस्लाम नहीं आया. अब मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको, तो आपको पता चलेगा. जनाब अब्दुल मुत्तलिब सरदार है और काबे के केयरटेकर है. उसी जमाने में, अभी रसूल की विलादत नहीं हुई, बर्थ नहीं हुई, उसी जमाने में अब्राहा नाम का एक किंग था, काफिर किंग, यमन में, यमन में रहता था. यमन में जब सीजन आता था हज का, तो यमन से और पूरी दुनिया से लोग मक्का आते थे और आके तवाफ करते, जो भी उस जमाने में सिस्टम था, हज करते. और इन सब को तीन दिन तक ये अब्दुल मुतलिब, उसके बाद जनाब अबू तालिब, ये लोग उनकी मेहमानदारी करते. जैसे आज करबला में मेहमानदारी हो रही, उसी तरह मेहमानदारी करते जितने हाजी लोग आते, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के मेहमान होते. तो अब्राहा ने कहा कि ये क्यों जाते हैं ये लोग. वो कहा कि वहां पे एक मक्का है, तो मक्के में काबा है. तो कहा काबा क्या है, तो कहा बताया उसको पूरी हिस्ट्री. उसने कहा ये ऐसा अगर है तो मैं भी बना सकता. उसने यमन में बिल्कुल काबे की छवि बनाई और कहा कि तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तवाफ करो. आपको तो मालूम है जितनी डुप्लीकेट चीजें उनका तवाफ होता ही नहीं, नहीं असर होता. तवाफ तो हो भी जाए तो असर नहीं होता. जितनी आपके सामने सब तारीख है, मुसीबत आती है तो यही लोग आते इस दरवाजे के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बहरहाल लोग गए नहीं. इसने कहा अच्छा मैं बना. अच्छा पैसे वालों का गुरूर बहुत है ना, बॉम्बे में नहीं है गुरूर, मैं एक बात बोल रहा, ईगो, हमारा ईगो को हर्ट अगर कोई कर दे तो एक हंगामा मचे. ईगो उसका, उसका ईगो हर्ट हुआ. किंग, उसने कहा मैं आता हूं, मैं वाकया डिटेल में नहीं जाता, आता हूं और आके काबे ही को तोड़ दूंगा. तो वो पूरी आर्मी को, मशहूर वाकया, वो पूरी आर्मी को लेके आया. अरब का जो जानवर है, अरब में जो जानवर, जो एनिमल है, वो है कैमल या हॉर्स. अरब का जानवर हाथी नहीं है, एलिफेंट अरब का जानवर नहीं, इसलिए अरब में रेगिस्तान है, डेजर्ट, डेजर्ट का जानवर एलिफेंट नहीं होता, आते है ही नहीं एलिफेंट. तो जब एलिफेंट्स का पूरी आर्मी मक्के में एंटर हुई, जितने जानवर मक्के में थे वो सब भाग गए खौफ के मारे. एलिफेंट कितना ह्यूज होता, और पूरी आर्मी एंटर होती है, पूरे जानवर भाग गए, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए. इसलिए कि देखो दोस्तों आजकल कुछ भी नहीं है तो जू तो है. मैं क्या बोल गया यार, जू तो है, जाके देख लेंगे एलिफेंट वहां पे. उस जमाने में तो कोई सवाल ही नहीं था कि कोई एलिफेंट को देखे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कौन जाए और देखेगा एलिफेंट्स होते. तो एक अजीब हंगामा मच गया पूरे मक्के में. मक्का छोटी सी आबादी 10-15-20 हजार की, और 200-300-400 हाथी एंटर हो जाए, एक जबरदस्त आग की तरह फैल गई. लोग दूर दूर हो गए, जानवर भाग गए, इंसान अपने दरवाजों को बंद कर लिया. और अब्राहा आके बोला कि एक सेकंड में ये काबे को तोड़ता हूं. बिल्कुल मक्के के सामने आ गया, काबे के सामने आ गया, आके कहा मैं तो इसको खत्म करूंगा. उसी असना में वो मशहूर वाकया हुआ, 2 मिनट का वाकया सुनी ले. उसने क्या किया, जो हाशमी फैमिली के जानवर थे, शीप, गोट, ये सब चीजें थी ना, 50-60 उस जमाने में लोग पालते थे, उन सबको उसने कहा ये जो जानवर सामने उसको पकड़ लो. पूरे जानवरों को पकड़ के अपने उसमें ले लो. आर्मी है, हाथी है उसके साथ, तीर तलवार नैजे, इतनी बड़ी आर्मी है, मक्का गरीब लोग सब दरवाजे बंद करके बैठे हुए. जब मालूम हुआ ये जानवर थे जनाब अब्दुल मुतलिब के, अभी अल्लाह का रसूल पैदा नहीं हुआ, ये जानवर थे अब्दुल मुतलिब के, इन लोगों को मालूम हुआ, इनको मालूम हुआ कि अब्राल आर्मी लेके आया, सबको पता चल गया, हंगामा मचा, लोग इनके पास आए कि अब क्या करना. इन्होंने कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, डोंट वरी, इंतजाम सब हो जाएगा। इसलिए कि जिसको यकीन होता उसके ऊपर वो घबराता नहीं। सबसे पहले मुहर्रम में यकीन को पैदा करो हुसैन के ऊपर, यकीन बिलीव को स्ट्रांग करो, फिर देखो कि तुम्हारी डेस्टिनी बदलती कर सब। जब इनको यह पता चला कि इनके जानवर पकड़े गए, तो अब्दुल मुत्तलिब खुद पर्सनली उसके कैंप में गए अब्राहा के। लोगों ने पूछा आप कौन है, पूरे ग्रुप के साथ गए, कौन है? तो आपने कहा कि मैं यहां का सरदार अब्दुल मुत्तलिब हूं। वो समझ गया, वो कहा मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि वो आएंगे मेरे पास और आके मुझसे बात करेंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब एंटर हुए, रसूल अल्लाह के दादा एंटर हुए, वो खड़ा हो गया, बड़ी इज्जत के साथ बाजू बिठाया, पूछा किधर आ गए आप? ये समझ रहा कि आके अब हाथ जोड़ेंगे, बेक करेंगे, बोलेंगे भाई काबा हमारी इज्जत है, मत इसको गिरा, जो तेरा डिमांड है हम पूरा करते, छोड़ दे, वापस चला जा। गए, पूछा किधर आ गए, तो कहा यार सुन, तेरे लोगों ने मेरे जानवरों को पकड़ लिया। कहा कौन से जानवर? कहा मेरी शीप थे, कुछ गोट्स थी, उनको पकड़ लिया। लिटरली वो खड़ा हो गया अपनी जगह से, खड़ा होकर अब्राहा ने कहा काफिर है तुम मक्के के सरदार? कहा मैं सरदार। काबा तुम्हारे अंडर में? तो कहा तुम्हारे। काबा तुम्हारी इज्जत है? तो कहा मेरी इज्जत, हमारी इज्जत है काबा। तुम्हारी फैमिली ने बनाया? कहा हमारी फैमिली ने बनाया। कहा तुमको मालूम है मैं क्यों आया हूं? तो कहा आई नो क्यों आया है। इतना जो सवाल कर रहा बड़ा पोलाइटली, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से जवाब दे रहे। पहचान है शिया की, कभी फ्लेयर अप मत हो। फ्लेयर अप वही होता कि जो कमजोर होता, जब तुम्हारे पास यकीन होगा तो तुमको फ्लेयर अप होने की जरूरत ही नहीं। तो उसने क्या कहा, तुमको मालूम है मैं तोड़ दूंगा काबे को? कहा तोड़ दे, तोड़ दे, हिम्मत है तो। कहा तुम क्यों आए? कहा मैं जानवरों को लेने आया। तो कहा तुम कैसे सरदार? तुम जानवरों के लिए, चंद जानवरों के लिए आए, काबे की हिफाजत के लिए बात नहीं कर रहे? कहा जानवर का मालिक मैं हूं, काबे का मालिक वो है। मैं कौन इसकी हिफाजत करने वाला? कितना यकीन है। इन्हीं का बेटा तो अली है कि जिसने कहा मेरे सामने से पर्दे हट भी जाएं तो यकीन में कमी नहीं होगी। नहीं कहा कि मैं थोड़ी मालिक हूं जिसका। अब अल्लाह ने क्या किया, इस यकीन को देखो, यकीन इतना था। तो अब्राहम ने कहा ठीक है, जानवर तो छोटा लेकिन तुमको मालूम आई एम गोइंग टू जस्ट खत्म कर दूंगा तुम्हारे काबे को। कखर थे ये अपने जानवर को लेके वापस आ गए। अल्लाह का ने पूरा सूरे फील आपके सामने क्या कहा उसमें, हमने छोटे छोटे जानवर अबाबील, यू नो अरब में यहां पे होती नहीं होती मुझे नहीं मालूम, ये एक अजीब बर्ड, इतनी सी बर्ड है, इतनी सी बर्ड्स की 1000 किस्म है, इतनी सी बड़े अबाबील, इतनी हार्डली इतनी 2 इंच या 4 इंच या 5 इंच की होती है, उसका मुंह इतना सा मुंह होता था, यू ही बिल्कुल इतना। अल्लाह ने अबाबील को, पूरा वाकया मशहूर है, मैंने वाकया नहीं पढ़ा, मैं खाली सरसरी जा रहा जब बात यहां तक आई, अबाबील को भेजा। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब चले तो कहा कि तुम्हें मालूम है मैं ये हाथियों के जरिए, लश्कर के जरिए काबे को तोड़ूंगा। कहा तो तोड़ नहीं सकता, तेरे ऊपर अजाब आएगा। कहा अजाब, अजाब क्या, जब पैसा आ जाता तो अजाब अजाब हम भी भूल जाते ना, यहां हम याद रखते अजाब। जब पैसा खूब आ जाता, गुरूर तकबर आ जाता, बहुत बाज़त ये सोचते कि यार अजाब तो दूसरों पे आएगा, मेरे पास थोड़ी आएगा कभी। ये 24 घंटे में एक दफा दुआ करो कि अल्लाह इस अजाब से बचा ले, बीमारी भी बाज़त अजाब बन जाती, शुक्र करो हमेशा। तो उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था क्या है अब्राहम, आसमान की तरफ देख। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो ब्लैक रंग के क्लाउड्स थे, उसको नजर आ रहे थे काले बादल। उसने कहा ये तो बादल है, बारिश होगी। कहा बारिश नहीं होगी, गौर से देख। जब वो नजदीक आए तो छोटे से अबाबील थे, उनके मुंह में इतना सा कंकर था, स्टोन इतना सा। आपने गौर किया, उन्होंने आके सिर्फ कंकर डाला। पूरा सूरह फील में मौजूद है अल्लाह कि ऐसे हाथी चबाए हुए जानवर भूसा हो गए। बहुत आराम से उन लोगों ने एक एक चीज, एक एक जगह पे पूरे लश्कर को उसने खत्म किया। मैं 1 मिनट में वाकया पढ़ दिया, लेकिन आपने गौर किया, कोई अल्लाह से पूछे कि तू इतना खतरनाक हथियार इतना सा स्टोन लेकिन वो एक मिसाइल का काम कर रहा हो आज की जमान में, तो इतना खतरनाक हथियार इतने से जानवर को दे रहा कि जिसको अकल नहीं है, जानवर को अकल नहीं होती, इंसान को अकल है, अल्लाह ने हमको अकल दी है, जानवरों को अकल नहीं दी, इतना छोटे सा जानवर जिसको अकल ही नहीं है, अगर वही स्टोन वो जनाबे अब्दुल मुतलिब के घर पे डालते या काबे पे डाल देते तो खत्म हो जाता, इतना खतरनाक था। तो यहां अल्लाह बोलेगा कि तुमने सूरे की तरस नहीं देखी, सूरे में मैं कह रहा अरसलहू, मैंने बनाया, मैंने भेजा, जो उसको अल्लाह बनाता वो गलती नहीं करता। अरे यार ये हमारे रसूल के लिए भी बात आ रही है, जिसको अल्लाह बनाता वो गलती नहीं करता, वो पूरा खत्म हो गया। वो उसी साल हमारे रसूल की विलादत हुई। मैं एक दो मिनट में वाकया पढ़ दिया, इसलिए पढ़ा कि मक्के का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया था। उसी साल पहले आमिल फील को अल्लाह का रसूल पैदा हुआ, उसी साल। अब अल्लाह का रसूल पैदा हुआ, ये सारे ट्राइब्स साथ साथ हैं। अल्लाह के रसूल ने 40 साल तक, 40 इयर्स तक, पूरा ये अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, वलीद था, खालिद था, अबू सुफियान था, ये पूरे ट्राइब्स मक्के के, ये सारे ट्राइब्स के सामने हमारा प्रॉफिट जिंदगी गुजारा 40 इयर्स तक। लेकिन ऐसी जिंदगी गुजारा, ऐसी लाइफ गुजारे कि आज एग्जाम्पल है इनके काफिरों के सामने। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ कि कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट ऐसा था, उनके अखलाक ऐसे थे, उनकी ऑनेस्टी ऐसी थी, उनकी ईमानदारी ऐसी थी, उनका इल्म ऐसा था कि बड़े बड़े जो जिन लोगों ने जान के जो दुश्मन बन गए थे, लेकिन उनको भी रसूल के ऊपर इतना यकीन था कि ये इनसे ज्यादा ऑनेस्ट मक्के में नहीं है। क्यों? अपने माल को रखा के बता रहे थे कि इससे ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना ईमान, शिया की पहचान ऑनेस्टी है। इमाम अली की सेइंग है, इमाम अली कहते हैं कि अगर मेरे शिया को पहचानना है ना, गौर से सुनो, एक जुमले की सेइंग है, इमाम अली कहते हैं अगर मेरे शिया को पहचानना है तो जरा उनसे डीलिंग करके देखो, पैसों की डीलिंग करके देखो, मालूम होता अंकल कितने ऑनेस्ट है। रखा है आप 10 लाख रुपए, अब बोले कि मैं 1 महीने के बाद लूंगा, ऑनेस्टी है। देखो तो मैं यूथ को बोल रहा, तुम लोग अपनी लाइफ में पूरी सिवाय ऑनेस्टी के कुछ नहीं करना, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो, फिक्र मत करो कि ये माल और ये माल और ये माल, नो नो डोंट वरी, तुम ईमान पे भरोसा करो, अल्लाह तुमको कभी तुम्हारे हाथ को खाली नहीं करेगा। ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम ऑनेस्टी के साथ जिंदगी गुजारना। तो अल्लाह के रसूल ने वहां पे 40 साल इन काफिरों के साथ गुजारी। उसके बाद जब आपकी 30 ईयर्स की लाइफ हुई थी, इमाम अली मक्के में आए, दुनिया में अली का नूर आया। मैं सब आखिरत को छोड़ दे रहा, काबे में पैदा हुए, फिर आप 10 साल अल्लाह के रसूल के साथ जिंदगी गुजारी। मक्का में 10 ईयर्स के बाद फिर वो दावत जुल अशीरा है, फिर पूरे मक्के की लाइफ है, 13 ईयर्स तक आप रहे। लेकिन आपको मालूम है कि जनाब अब्दुल मुतलिब के, फिर मैं बैक जा रहा वापस खाने काबा की तरफ, अब्दुल मुतलिब के बाद जो सरदार बने मक्के के, अब्बास नहीं बने, जो रसूलुल्लाह के चचा थे, जनाब अबू तालिब बने। इमाम अली ने अपने एक सरमन में कहा है कि मेरा बाबा गुर्बत के आलम में सरदार था। अरे क्या बोला यार, अली का अजीब जुमला है कि मेरा बाप पैसे वाला नहीं था, गरीब था, लेकिन मक्के का सरदार था। पैसा क्राइटेरिया नहीं है, स्टेटस जो अल्लाह ने दिया वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया। तो कहा मेरा बाप गुर्बत के आलम में सरदार मक्का था। अब सुनो, इस्लाम नहीं आया जनाब अबू तालिब, मैंने एक जुमला बोला था, शायद आपको याद है या नहीं, कि ये फैमिली जो थी प्रॉफिट की, इन्होंने कभी भी शिर्क नहीं किया, किसी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी रिस्क हराम नहीं खाया। अब सुनो, अबू तालिब, इस्लाम नहीं आया मक्के में, सरदार है जनाब अबू तालिब, अब्दुल मुतलिब की वफात होती, खाने काबा में बारिश हुई मक्के में, जबरदस्त बारिश हुई और काबे की दीवारें टूट गई, उस जमाने में इतनी सॉलिड दीवारें नहीं थी, टूट गई। और हज का जमाना करीब आ गया, उस जमाने का हज, जब हज का जमाना करीब आया तो पूरे मक्के वालों की इज्जत है काबा, अभी इस्लाम का नहीं आया, पूरे मक्के की इज्जत है, उनका बिजनेस होता है हज के सीजन में, सब परेशान। सरदार जनाब अबू तालिब के पास आए और आके कहा कि अबू तालिब काबा तो टूट गया, अब बारिश रुक गई, हम चाहते हैं कि काबे की दीवारों को बना के फिर काबा वैसी बना दे। काट जाओ, ये लोग पूरा सामान वामान लेके अबू जहल, अबू लहब, उधबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये सरदार, ये ट्राइब्स के, ये पूरे अपने लोगों को लेके काबे की दीवार के पास पहुंचे और पहुंच के सामान लेके चले जो कंस्ट्रक्शन का सामान था। गए तो देखा कि हर तरफ काबे की दीवार टूटी हुई, जब फाउंडेशन से काबे के पूरे वहां पे जब वो लोग फाउंडेशन से उठाना चाहते तो देखा कि उस फाउंडेशन में बड़े बड़े अजदहा सांप बैठे हुए और इनको कुछ करने ही नहीं दे रहे। अब सांप से तो सभी डरते नहीं डरते, खबर में भी आने वाला है, अब तो और डर हो गया। पहले ही मैं बदनाम जाकिर के डराने वाला कि सिवाय मौत की कोई बात ही नहीं करते। इतनी आदत हो गई मुझे कि कोई मजलिस में कहीं से भी मौत का जिक्र ला सकता हूं। मैं एक ही बात बोलता, पूरी दुनिया में सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि किस स्टाइल से बढ़ते। जब बोलते कि यार इतना डराते हो, तो मैं यही कहता कि यार अपने आप को अली वाला भी बोलते हो और डरते भी हो। फिर बोलना छोड़ दो कि मैं अली की मोहब्बत रखता हूं, इमाम अली की मोहब्बत भी और डरते भी हो। करते क्यों ऐसा? दाढ़ी को मत मुंडो, कोई फिक्र मत करो, ड्रिंक मत करो, कोई मसला नहीं है। बेहिजाब औरत ना जाए, कोई मसला नहीं है, उसको सांप वांप नहीं आता। ड्रग्स मत लो, गैस से दोस्ती मत करो। खामोश हो गए, मुझे बोलना है, कल परसों में बोलूंगा। कोई ऐसा काम नहीं करो जिसको अली नहीं पसंद करते, जिसको मौला हुसैन पसंद नहीं करते, वो मत करो। इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह रिजवी में बैठा हुआ, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुहर्रम में अपनी सीरत हुसैन पे चलने की कोशिश करो। अगर सीरत हुसैन पे तुम चलोगे तो यू विल ग्रो इन बॉम्बे। सिर्फ इजी लेके जिंदगी गुजारोगे, हर साल मुहर्रम आता, ये भी मुहर्रम आ गया। प्लीज अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई समथिंग टू डू फॉर इमाम हुसैन। एनीहाउ, तो सब शाम और भी चुप शाम बैठे हुए, ये लोग सारे वो सामान लेके अबू तालिब के पास आए। अभी इस्लाम नहीं आया, आगे कहने लगे अबू तालिब तुम कह रहे हो कि वो कंस्ट्रक्ट करो तो कर ही नहीं सकते। तो आपने, आप सुनो, अभी इस्लाम नहीं आया, फिर बोल रहा अभी इस्लाम नहीं आया। ये फैमिली, प्रॉफिट की फैमिली जो मक्के में रहती थी वो कितनी पायस थी। आज जो मुसलमान रसूल को पायस नहीं मान रहे तो फैमिली को कहां से मानेंगे? मैं क्या बोल गया? ये हकीकत नहीं है क्या? आज का मुसलमान की बात कर रहा कि रसूल को बोल दिया कि ये माशाल्लाह कुछ नहीं थे, मैं बहुत अल्फाज बंद करके बोल रहा, तो इनकी फैमिली को कहां से मानेंगे? इसलिए रसूल को किया कि इनकी फैमिली खराब थी तो रसूल की फैमिली को भी खराब कर दिया। इनकी फैमिली का कोई स्टेटस नहीं है, इनके ऊपर जाके मालूम करो, बड़े बड़े लीडर्स के मालूम होगा कि कौन थे। बहरहाल, तो कहा कि अबू तालिब तुम कह रहे हो कि कंस्ट्रक्ट करो, हद सामने, यहां तो सांप बैठे हुए, किताब में है कि अजदहे थे। तो अबू तालिब ने कहा सुनो, ये सामान जो तुम लोग लाए हो ना, ये सब हराम का है, हराम पैसे से खरीदा है, अल्लाह कभी अपने घर को हराम पैसे से बनने नहीं देगा। दोस्तों, इस्लाम आने से पहले हलाल और हराम का यह ख्याल था अबू तालिब को। समझ में आई बात? आज इस्लाम आने के बाद हमारे पास ख्याल नहीं है कि क्या हराम है क्या हलाल है। यह भी बड़ा मैसेज था कि अपने रिस्क को पाक रखो। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि मक्के में जितने वो लीडर्स थे, आज इस्लाम के लीडर्स बने हुए, उन लोगों की सारी दौलत में एक एक जो खसल अंबिया से रिवायत पड़ा, एक एक पैसा उनका हराम था। तो रसूल अल्लाह, अबू तालिब ने कहा कि अल्लाह अपने घर को बनाने नहीं देगा। अल्लाह फिर बोल रहा, अल्लाह अपने घर को हराम दौलत से बनाने नहीं देगा। आप देखो, इसी मक्के में एक और खातून थी, लेडी थी, जिसका पैसा इतना पाक था कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब तुम तो गरीब और मिस्कीन थे, हमने माल दिया। क्या सुन रहे यार? वो किसका पैसा था? फातिमा की मां का पैसा था। वो यहां मस्जिद काबा बनने नहीं दिया, वहां पे मस्जिद जरार को मदीने में तुड़वाया सिर्फ एक चीज के लिए। दो चीजें थी, एक हसद थी, मुनाफिकत थी, दूसरी चीज वो हराम की दौलत से बनी थी। इस्लाम आने से पहले लोगों के पास हराम था, लेकिन खतीजा का पैसा पाक था। इस्लाम आने के बाद जब लोगों का पैसा हराम हुआ तो अंदाजा लगाओ कि खतीजा की दौलत क्या थी और कितना पाक पैसा खतीजा का था, इसलिए कि फातिमा की मां बनने वाली थी। एनी तो फिर उन लोगों ने कहा फिर हम क्या करना, तो अबू तालिब ने कहा वापस जाओ, दिन भर मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसे को जमा करो, जमा करके हलाल पैसे से सामान खरीदो और लाओ तो फिर बनेगा। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, मेहनत की, मजदूरी की, मजदूरी करके हलाल पैसे से सामान खरीदा और पूरा सामान लेके फिर काबे के पास आए। जब काबे के पास आए तो देखा कि उसके फाउंडेशन में फिर बैठा हुआ है। इन लोगों ने कहा यार अबू तालिब इतनी मेहनत करवा दी, वो तो गया ही नहीं अभी तक, अरे वही अच्छा नहीं था, इतनी मेहनत करवा दी हमसे, इनसे मेहनत वेहनत नहीं होती, जिसको हराम की आदत हो जाती ना, बहुत बड़ी बात है, जिसको हराम खाने की आदत होती, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत या हुसैन की बात उसको समझ में आ ही नहीं सकती जो रिस्क हराम खाता है। मैं औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा कि अपने शौहर की अर्निंग्स को चेक करो। तो आप बोलेंगे कैसे चेक करें, अरे बाबा तुम तो शादी नहीं करती जब तक अर्निंग्स मालूम ना हुई। कोई लड़की करती है बॉम्बे की, मैं बॉम्बे क्या पूरी दुनिया में देखता हूं, शादी से पहले व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पूछ लेती कैन यू एफोर्ड मी, पूरी लिस्ट आ जाती मेरा इतना खर्चा है तुम एफोर्ड कर सकते, पहले सैलरी पूछते। लड़कियों को मालूम है शादी से पहले कि उसका हस्बैंड कितना कमाता है, अगर अच्छा खासा ठीक ठाक कमाता है तो जरूर करती शादी, कोई बुरी बात नहीं है, जरूर पूछो शादी पैसा कितना कमाता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, मैं तो एनकरेज कर रहा, जरूर पूछो अपने हस्बैंड की अर्निंग्स को। मिसाल के तौर पर तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे बॉम्बे में काम करता है, 200,000 उसकी सैलरी है, अरे आमीन तो बोलो, पैसे की बात है, 200,000 अगर किसी की सैलरी है वो लड़की नहीं करेगी शादी, 100% करेगी। लेकिन अगर हर महीने में सैलरी आने से पहले आपको तो मुझे नहीं मालूम, अब जैसे ही शादी हुई उसने कहा सुनो सैलरी मेरे अकाउंट में आनी चाहिए, मैं घर को चलाऊंगी, ऐसे लोग हैं। अभी मेरे साथ ज्यारात पे भी थे, नाम नहीं बोल रहा कौन से ग्रुप में, दो ग्रुप्स में गया था, कोई ग्रुप का आप जब तसव्वुर मत करो वो क्या होगा, नो वो गुनाह है। तो ज्यारात पे भी थे तो कहने लगे कि मौलाना मैं तो एक पैसा नहीं रखता, ट्रांसफर कर देता फौरन, मैं फ्री हो जाता। तो ऐसे लोग भी है, 200,000 अगर तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी है, अगर किसी मंथ में वो 250 लेकर आए तो थैंक यू बोल के रख मत लो,
क्या बोल रहा है,
थैंक यू बोल के रखो मत, क्यों कि अच्छा है 50,000 ज्यादा आ गए, पूछो आए कहां से, आए कहां से, इसलिए कि अगर वो 50,000 जो तुम्हारा शौहर ला रहा अगर वो हराम से आ रहे तो तुम भी हराम खा रहे, अपनी औलाद को हराम खिला रहे, फिर मुहर्रम का मजा नहीं है, फिर इमाम हुसैन की बात समझ में नहीं आएगी। तुम थैंक यू मत बोलो, पूछो आए कहां से, कहीं ब्राइब तो नहीं ले ली, कोई और तरीके से तो नहीं आई। हमेशा याद रखो जब तक रिस्क हलाल नहीं होगा कोई चीज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरी शबे 3 मुहर्रम की मजलिस का, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। समझ में आवाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आए लोग आगे कहने लगे अबू तालिब तुमने मेहनत करवा ली, अभी तक वो बैठा हुआ है। जनाबे अबू तालिब, अच्छा जनाबे अबू तालिब मक्के में कहा, काबे में अगर आप अल्लाह हमको काबा जाना नसीब करे, आज तो पूरा नक्शा बदल गया, जहां पे जन्नतुल मौला है वहीं पे जनाबे अबू तालिब लोगों का घर था। काबा नीचे वैली में ऐसे पहाड़ थोड़ा सा ऊंचाई थी, वहां जनाबे अबू तालिब ने ये फैमिली रहती थी। काबा उस जमाने में ऐसी पूरी बाउंड्री में नहीं था, जैसे आज एक बाउंड्री में एक मॉस्क बनी हुई, वैसा नहीं था, काबा बीच में था वैली के अंदर, इधर भी घर थे उधर भी घर थे इधर भी हर तरफ घर होते थे, और इतना ह्यूज नहीं था इसलिए इतनी पब्लिक नहीं आती थी, 2,000-5,000 लोग तवाफ करने के लिए। तो काबा बिल्कुल अलग वजह से था, आज जैसे काबा वैसा नहीं था, काबा जगह तो वही है काबा वैसी है, लेकिन आबादी पूरी अतराफ में थी। तो जनाब अबू तालिब ऑल द वे चलते हुए काबे के पास आए, आके अपनी आंखों से देखा कि बड़ा अजदहा नीचे बैठा हुआ है, कसस अंबिया से रिवायत पड़ा। अब इन लोगों ने कहा देखो अपनी आंख से बैठ हवा है, अब हम बनाएंगे कैसे, मेहनत से पैसे लाए, हलाल सामान से लाए। जनाब अबू तालिब ने आसमान की तरफ ऐसा देखा, देख के जेरे लब कुछ दुआ पड़ी, क्या पड़ी बोल दो। काबे में सबसे अच्छी दुआ, कल मैंने ये बात नहीं बोली थी, जनाब अबू तालिब ने भी जो पढ़ी उसकी तारीफ की, जो आज हम तस्बीहात अरबा पढ़ते ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वो चीज है दोस्तों। आपको मालूम ये चार अल्लाह के नाम है बस, मैं मजलिस इसी पे खत्म कर रहा हूं। चार नाम है अल्लाह के, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तस्बीहात अरबा जो थर्ड और फोर्थ रकात में आप पढ़ते, अबू तालिब ने तस्बीहात अरबा आसमान की तरफ देखा। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया ये बात, इस्लाम नहीं आया, अबू तालिब सुभान अल्लाह बोल रहा, इस्लाम नहीं आया, अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा, इस्लाम नहीं आया, अबू तालिब ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा, इस्लाम नहीं आया, अबू तालिब अल्लाहु अकबर बोल रहा। फिर बोलते काफिर है, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह किसने बोला, क्या बोल रहा मैं, पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह है किसने बोला, पूछो तारीख से, पूछो हिस्ट्री से। मैं जनाबे अबू तालिब पे मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं खाली आपको बता रहा हूं, मक्के का जिक्र करो, अबू तालिब का जिक्र ना करो, मक्का बचावा रहा अबू तालिब से। ये मत बोलो कि कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा वो सेकेंडरी चीज है, अबू तालिब को जरूरत नहीं थी कलमा पढ़ने की, वो कलमा पढ़वा रहे थे, पढ़वा रहे थे। आसमान की तरफ देखा, तस्बीहात अरबा पढ़ी, कसस अंबिया, रिवायत का जुमला के ऊपर से एक बर्ड, एक परिंदा आया उड़ता हुआ, आके वो बुनियादों में गया नीचे, अपनी चोंच में उस अजदेह को लेके आसमान की तरफ बनाने गया। अबू तालिब ने कहा अब बनाओ, तो इन लोगों ने कहा यार अच्छा हुआ चला गया, इसलिए कि खौफ था ना सांबर बिच्छू से, कहा अच्छा हुआ। कहा देखो अबू तालिब से यह नहीं पूछा कि था क्या, क्या था, एक ही चीज जनाब अबू तालिब ने कहा कि जिंदगी में याद रखो, हराम चीज से तुम अल्लाह के पास नहीं जा सकते, ये हमारे लिए भी मैसेज। उसके बाद काबा बना, और उसी साल जो वाकया है हजरत अस्वद का अल्लाह के रसूल का लगाने का, 7 या 8 ईयर्स के थे रसूलुल्लाह, हजरत अस्वद जो लगाए तो रसूल ने सारे कबीलों से एक चादर में रख के आए और अपने हाथ से रसूलुल्लाह ने हजरत अस्वद को फिक्स किया। बस दोस्तों अभी तो मैं मक्के में काबे में ही हूं, मैं चाहता था कि आज काबा मक्का कंप्लीट कर दूं, लेकिन मेरा वक्त हो गया, मुझे अपने वक्त पे खत्म करना है, 1 घंटे की मजलिस है। कल जन्नतुल मौला पढ़ के मैं मदीने में आ जाऊंगा। जन्नतुल मौला आम तौर पे लोगों को नहीं मालूम है कि कहां है जन्नतुल मौला। हम जाते, आज के दौर की बात कर रहा हूं, आज हम क्या करते जन्नतुल मौला में, वो फ्लाईओवर के ऊपर जाते, जो नया फ्लाईओवर बना हुआ है, और बस वाले बस वक्त काफिल वालों को जो वाक बस ड्राइवर्स होते वो लोग बोलते नहीं बाहर से ज्यारत करो, या बस काफिले नीचे उतरते वो फ्लाईओवर रोड पे आते और दूर से बोलते कि ये जन्नतुल मौला है। जन्नतुल मौला क्या है, ये कौन सी सेमेट्री है, कौन सा ये ग्रेवयार्ड है, ये इस्लाम का पहला ग्रेवयार्ड, पहली सेमेट्री कि जहां पे पूरी फैमिली जनाब हाशिम से लेके अब्दे मनाफ से लेके अब्दुल मुत्तलिब से लेके अल्लाह के रसूल की मां, नहीं मां भी नहीं, आपकी जौजा जनाब खदीजतुल कुबरा पूरे वहीं दफन है। कल जन्नतुल मौला की फजीलत क्या है वो सुनना, फिर कल इंशाल्लाह हम लोग मदीने में एंटर होंगे। मदीने में एंटर होंगे तो मदीने में एंट्रेंस के ऊपर ही मस्जिद कुबा है, पहली मस्जिद इस्लाम की, फर्स्ट मॉस्क। आज के दौर में क्या होता, हम जाते उमरे पे जाओ या हज पे जाओ, अल्लाह बार बार नसीब करे, गए मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़े और आगे। तो मस्जिद कुबा की जो इंपॉर्टेंस है वो कल सुनना, फिर वहीं पर मस्जिद क़िबलतैन है वो भी कल सुनना, फिर मदीना शहर, सिटी ऑफ मदीना, कि जो जहां पे ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक अल्लाह के रसूल और पूरी उनकी प्रोजेनी, पूरी उनके अहले बैत, पूरे 10वें इमाम तक का जमाना पूरा मदीने में गुजरा। तो ये पूरा कल मदीना सिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा 2 दिन तक। फिर 6-5 मुहर्रम से नजफ अशरफ में जाएंगे इंशाल्लाह, नजफ अशरफ और करबला इंशाल्लाह रिजवी के इस अशर में कंप्लीट करेंगे। अब एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। दोस्तों ये सारी हिस्ट्री आपने सुनी जो एक दो दो घंटे की मजलिस में, बस कल और आज मैंने सारी चीजों को छोड़ा। मैंने जैसे कहा कि 5 दिन सिर्फ मक्के मौजमा में पढ़ सकते, कि इतनी बाबरकत जगह। मैंने सवाब तो बता ही नहीं मक्के के। एक चीज याद रखो, जब भी उम्रे पे जाओ या हज पे जाओ, या अगर तुम चाहते कि तुम उम्रे पे जाओ या हज पे जाओ, तो तस्बीहात अरबा डेली उसकी तिलावत करो। ये सोच के तिलावत करो कि ये वो तस्बीह है। आप इसमें क्या है, सुभान अल्लाह, आप अल्लाह को प्रेस कर रहे। फिर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। फिर आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह एक होने का ऐलान कर रहे। उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह का वो नाम है कि अगर तुम ये नाम बीबी की तस्बीह में भी है, ये वो नाम है कि जिससे अगर तुम इसकी तिलावत रोज करो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को बढ़ाता, अल्लाह तुमको बुलंद करता, इसलिए कि इसमें तुम अल्लाह की तारीफ कर रहे कि तू सबसे बड़ा है, तो अल्लाह तुमको भी बड़ा करता अपने माशरे में। यह अजीब तस्बीह है। लड़की की शादी के लिए भी बहुत अच्छी है, उसकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी है, औलाद नहीं हो रही उसके लिए अच्छी है। रिस्क का तुम अपने डे का स्टार्ट करो, यू स्टार्ट योर डे विद तस्बीहात अरबा, 18 मर्तबा पढ़ो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर। आप कल पढ़ो, शाम में मुझे बताना कि कितना तुम्हारे दिन में फर्क आया। 1000 फायदे बताए गए, 1000 फायदे, मिराकल्स ऑफ तस्बीहात अरबा, बाकायदा बुक्स छपी है कि मेरा हैरत अंगेज वाकयात तस्बीहात अरबा के। ये मुसलसल पढ़ते रहो, अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत में इज्जत देता, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करता। बिजनेस जब तुम स्टार्ट करो, जब बिजनेस में जाओ तो कितनी देर होती, 2-3 मिनट। बिजनेस में डीलिंग शुरू करने से पहले तुम अगर तस्बीहात अरबा पढ़ के बिजनेस शुरू करो तो तुम देखो कि बिजनेस में अल्लाह बरकत कैसे देता। उसके बाद अगर तुम्हारा रिस्क का प्रॉब्लम है तो तस्बीहात अरबा पढ़ो। अगर तुमको स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस में परेशान हो गए, तो तस्बीहात अरबा पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इज्जत चाहते हैं माशरे में तो तस्बीहात अरबा पढ़ो। 1000 फायदे बताए गए। जब भी कोई अच्छी चीज देखो, कोई जंगल को देखो, कोई सितारों को देखो, कोई अल्लाह की अच्छी चीज को देखे, फौरन बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वाजिब नमाज में रख दी गई। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जो नमाजों में सबसे बड़ी नमाज है जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब की, उस नमाज में 300 मर्तबा तस्बीहात अरबा पढ़वा के बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस को जानो कि तुमको क्या फायदा इस तस्बीह से मिल सकते। बस मुसलसल बोलूं लेकिन घड़ी की सुई मेरा साथ नहीं दे रही और मेरे ऊपर प्रेशर है 10-15 पे खत्म कर दो। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस प्रेशर का। कैसे खत्म करूं, जिक्र हुसैन खत्म नहीं होता, उस गरीब का जिक्र है ना। आज 3 मुहर्रम की रात है, ये शबे 3 मुहर्रम, 2 मुहर्रम गुजर गई, 3 मुहर्रम की रात में हम पहुंच गए। आपको मालूम आज हुसैन करबला पहुंच गए। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया कि हुसैन करबला आ गए। दोस्तों हुसैन करबला मंजिलों को तय करके आए। 8 जिलिज को चले थे, मंजिलों को तय करके 2 मुहर्रम के दिन करबला पहुंचे। कैसा उस वक्त करबला क्या था, करबला एक मैदान था, जंगल था, खजूर के झाड़ थे, जंगल, टोटल जंगल था। मौला हुसैन की सवारी जब पहुंची, काफिला पहुंचा, तो जिस घोड़े के ऊपर हुसैन थे वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर इमाम को तो पता था ये जगह क्या है, एक के बाद 7 जानवरों को बदला। फिर उतरे मौला घोड़े से, जमीन को उठाया, सूंघा, डाल दिया, डाल के बनी असद का जो ट्राइब थी वहां पे उनको मैसेज दिया कि हुसैन इब्न अली आए, तो सारे लोग जो खरीब के ट्राइब से सब भागते हुए आए कि रसूल का नवासा आया। सब ने आके मौला, बच्चे भी आए, औरतें भी आई। इमाम ने सबको, इमाम से सलाम हुआ, इमाम ने सब के सरों पे हाथ फेरा। उसके बाद हुसैन ने पूछा कि ये जमीन क्या है, क्या नाम है इस जमीन का। तो किसी ने कहा मौला नवा कहते। इमाम ने कहा कोई और नाम है, तो किसी ने कहा इसको शत्तुल फुरात कहते। फिर इमाम ने पूछा कोई और नाम है, किसी ने कहा इसको मारिया कहते। आपने एक बात गौर की, हुसैन को सुनना चाहते थे, एक दफा नाम पूछ के खामोश नहीं बैठे। कहा और कोई नाम है, और कोई नाम है। जब तीसरी मर्तबा कहा मारिया, तो इमाम ने कहा और कोई नाम है? तो एक बहुत सीनियर सिटीजन बुजुर्ग थे, उसने आगे बढ़ के कहा मौला इसको करबला भी कहते हैं। बस दोस्तों, बस दोस्तों, जैसे ही करबला का नाम सुना, मौला तो जानते थे, मौला अब्बास से कहा कि भैया काफिले को यहीं रोको, और कहा कि इस जमीन का मालिक कौन है? बनी असद वालों को बुलाया, खरीब ने कहा मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन लोगों ने कहा मौला हम हाथ ये आप रखे अपने पास, लेकिन हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि यहां पे कोई किसी को फायदा नहीं हुआ, आप ये जमीन को मत खरीदे या नुकसान होता है। हमारे आबा उजदाद ने कहा यह जमीन पे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं, ये जमीन किसी को सही नहीं रखती। हुसैन ने कहा अब कयामत तक हम इसी जमीन पे रहेंगे। उनसे रेट बात हुई, 60,000 तुमान या 60,000 दीनार की बात हुई, जो भी पैसा था। तो जैसे ही पता चला बीबी जैनब को कि हुसैन जमीन खरीद रहे, तो जनाब फिजा से कहा कि जाके भैया को बोलो कि ये जमीन मेरे अली अकबर के नाम पे ले लो। दोस्तों हुसैन ने सुना, आंखों में आंसू आ गए कि यहां पे अली अकबर का मजार बनेगा। जमीन खरीदी गई, खैमे रखे गए, हर तरफ खैमे लग गए, सैदानिया खैमे में आ गई। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, बीबी जैनब ने जनाब फिजा से कहा कि जाके भैया को बोलो जरा मुझसे आके मिले। अजीज ओ हुसैन जनाब जैनब के खेमे में पहुंचे, जैसे ही पहुंचे बीबी जैनब ने कहा भैया ये कौन सी जमीन है? जब से आई हूं बड़ा दिल घबराता है, मेरे खेमे के पीछे से एक बीबी के रोने की आवाज आती है। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। का मौल बा भैया ये कैसी जगह है कि मेरे खैमे के पीछे से किसी के तड़पने की रोने की, वो बीबी ऐसे रो रही जैसा पूरा घर उजड़ गया। हुसैन ने कहा कि जैनब ये करबला है और तुमने आवाज पहचाना नहीं, ये हमारी माँ फातिमा की आवाज है। बीबी करबला में पहुंच गई कि हाय मेरा घर उजड़ गया। वक्त गुजरा, इमाम ने बनी असद के कबीले को बुलाया, गुफ्तगु की और कहा सुनो 10 मुहर्रम को हमारी यहां शहादत होगी। शहादत के बाद दुश्मन अपनी नजिस लाशों को दफन कर देंगे, हमारी अब मेरे बच्चों की मेरे भाइयों की लाशें बॉडीज पड़ी रहेंगी। तो एक काम ये करना कि मर्दों से कहा कि तुम लोग आना और हमारे पास हमारी बॉडीज को दफन कर देना। उन लोगों ने कहा ठीक है मौला हम जरूर करेंगे। फिर इमाम को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, औरतों को बुलाया, औरतों को बुला के कहा सुनो अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के डर से हमको दफन ना करे तो तुम पानी के बहाने से आना नहर पे और आकर हमको दफन कर देना। उसके बाद इमाम की गुर्बत मेराज पे चली गई, हुसैन की गुर्बत मेराज पे गई, मर्दों को बोला, औरतों को बोला, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुला के उठाया, गोद में प्यार किया, सर पे हाथ फेरा और कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप दफन ना करे तो खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी खाक डालना, हम दफन हो जाए। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। बीबी तुम्हारे फुरसे को कबूल करे, बीबी फुरसे को कबूल करे। 2 मुहर्रम है, 3 मुहर्रम की रात है, मौला ने वसीयतें की। वक्त गुजरा, आशूरे में सब शहीद हो गए, 11 मुहर्रम को दुश्मनों ने अपने लोगों को दफन कर दिया, 12 मुहर्रम आई, काफिला चला गया, करबला के मैदान में सन्नाटा। जब सन्नाटा था तो उस वक्त बनी असद वालों को मालूम हुआ
کہ حسین کا قافلہ چلا گیا تو ان لوگوں نے مردوں نے کہا کہ ارے حسین نے ہم سے وصیت کی تھی کہ آ کے دفن کرنا, جب مرد چلنے لگے تو عورتوں نے کہا نہیں آخا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, عورتیں پیچھے آنے لگی, بچوں نے کہا نہیں مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا. تو اسی طرح آج تک 12 محرم کو مرد سامنے ہیں, ان کے پیچھے عورتیں ہیں, ان کے پیچھے بچے. جب یہ قافلہ کربلا میں آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لاشیں ہیں, کسی کے اوپر سر نہیں ہے. سردار کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ہائے اب ہم کو معلوم کیسے کہ حسین کون ہے, بچے کون ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا, اونٹ آ کے بیٹھا اور اس پہ قیدی تھا, ایک قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, جو بیڑیاں پہنا ہوا تھا, اس کی زنجیریں کھلی, بیڑیاں کھلی. اس نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. وہ بیمار نے آ کے ایک لاش کے قریب گیا جس کے سینے پہ زخم تھا, اپنے سینے پہ مار کے کہا ہائے یہ میرا بھائی علی اکبر ہے. اس کے بعد ابا کو بچھایا, لاش کے ٹکڑوں کو رکھا, کہا یہ قاسم ہے. اس کے بعد چھوٹی میتوں کو اٹھایا, کہا یہ اونو محمد ہے. اس کے بعد ایک 6 مہینے کے بچے کی میت کو اٹھایا, اٹھا کے سب قریب آئے. کہتے ہیں کہ ہم نشیب میں اترا, لاشا ٹکڑے ہو چکا تھا, اپنے سینے کو مار کے کہا بابا حسین, ان کو دفن کیا. علی اصغر کو حسین کے سینے پہ لٹایا, علی اکبر کو پہنتی کیا. ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں, تو کہا میں سید سجاد ہوں, میں امام زین العابدین ہوں, بس میں نے مجلس ختم کر دی, سب کو شہید کیا. اب بنی اسد والے جانے لگے تو کہا جاؤ مت, ابھی ایک لاش اور باقی ہے, میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں کہ ہم نہر کی طرف آئے, نہر پہ آ کے دیکھا کہ ایک شیر ہے, شیر جو لیٹا ہوا ہے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے. اس کی میت کو لٹایا, اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ چچا عباس آپ تو سو رہے, آپ کی بہنیں زینب کوفے میں ہے, ام کلثوم کوفے کے اندر. پروردگار مولا, آپ لوگ بیٹھ جائیں, اٹھے نہیں. مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار مولا حسین کے نام پہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, ہم سب کو زیارات نصیب ہو انشاءاللہ. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے, جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, وارث عزاداری امام زمانہ کو سلامت رکھ, امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. آج شب جمعہ, محرم کی پہلی شب جمعہ ہے, رضوی کالج کے ممبر سے دعا کر رہا, مولا حسین کے مصائب پڑھ کے دعا کر رہا کہ پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ کہ جتنے دنیا سے گزر گئے, آج پہلی جمعرات ہے محرم کی, سال کی فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے, اللہ جتنے مرحومین ہیں بالخصوص رضوی صاحب کے والدین, ان کے بیٹے, سب کو کی لحد میں ان کے گریو میں اپنی رحمتوں کو نازل کر. ہمارے ماں باپ کو بخش دے, سارے مرحومین کو بخش دے, عزاداری کی حفاظت فرما. یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. سارے جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما, جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے. ہمارا ایمان خاتمہ ایمان پر ہو, ہر بیماری سے محفوظ رکھ, کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اللہ ہم کو معاف کر دے, عزاداری کی تو حفاظت فرما, امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.